जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सद ग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ, ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग।
ओम श्री सदगुरु परमात्मा। कुंभज बोले, हे राजन, मैं तुम्हें उपदेश करता हूं, तुम उसे हृदय में धारण करो। जो तुम उसे हृदय में धारण करोगे तो मेरे वचनों से क्या होता है, जैसे डाल पर कौवा हो और शब्द भी सुने तो भी वह अपने कौवे स्वभाव को नहीं छोड़ता, वैसे तुम जो कौवे की तरह हो तो मेरा कहना व्यर्थ हो। जैसे तोते को जो सिखाते हैं उसे वह सीखता है, वैसे ही तुम भी हो जाओ। शिखर ध्वज ने कहा, है भगवान, जो तुम आज्ञा करोगे सो मैं करूंगा। जैसे शास्त्र और वेद के कहे कर्म करता हूं, वैसे ही तुम्हारा कहना करूंगा। यह मेरा नियम है, जो तुम आज्ञा करोगे सो करूंगा। तब देवपुत्र ने कहा, हे राजन, प्रथम तो तुम ऐसा निश्चय करो कि इन वचनों से मेरा कल्याण होगा। फिर ऐसा जानो कि पिता जो पुत्र को सिखाता है तो शुभ ही होता है। मैं जो तुमसे कहूंगा सो शुभ ही कहूंगा, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए निश्चय जानो कि इन वचनों से तुम्हारा कल्याण ही होगा। एक आख्यान है, जो पहले कभी हुआ है कहता हूं उसे तुम सुनो। एक पंडित धन और गुणों से संपन्न था, वह सर्वदा चिंतामणि के पाने की इच्छा करता था, इसलिए शास्त्र में जैसे उपाय कहे हैं वैसे ही करता था। जब कुछ काल व्यतीत हुआ तब जैसे चंद्रमा का प्रकाश होता है वैसे ही प्रकाशमान चिंतामणि उसे प्राप्त हुई। उसने उसके निकट जाना कि हाथ से उठा लेगा। जैसे उदयाचल पर्वत के निकट चंद्रमा उदय होता है वैसे ही चिंतामणि जब निकट आकर प्राप्त हुई तब पंडित के मन में विचार आया कि यह चिंतामणि है अथवा और कुछ है। जो चिंतामणि हो तो उठा लू और जो चिंतामणि न हो तो किस निमित्त उठा। फिर कहा, उठा लेता हूं, मणि ही होगी। फिर सोचा कि यह मणि नहीं है, क्योंकि मणि तो बड़े यत्न से प्राप्त होती है, मुझे सहज में क्यों प्राप्त हो। इससे विदित होता है कि यह चिंतामणि नहीं है। जो इस तरह आसानी से प्राप्त होती तो सब लोग धनी हो जाते। जब ऐसे संकल्प विकल्प कर पंडित विचारने लगा और इसके चित्त पर आवरण पड़ गया तब मणि छिप गई, क्योंकि जो सिद्धियां है उसका मान और आदर न करिए तो शाप देती। जिस दिव्य वस्तु का कोई आवाहन करता है और उसका पूजन नहीं करता तो वह उसे त्याग देती है। तब उसे बड़ा दुख हुआ कि चिंतामणि मेरे पास से चली गई। निदान वह फिर यत्न करने लगा, तब कांच की मणि उसका उपहास करने को उसके आगे आ। उसको देखकर वह कहने लगा कि यह चिंतामणि है। अबोध के कारण वह उसे उठाकर अपने घर ले आया और उसे ही चिंतामणि मान। जैसे मोह से जीव असत को सत और रस्सी को सर्प जानता है, जैसे दृष्टि दोष से दो चंद्रमा देख पड़ते हैं और मनुष्य शत्रु को मित्र और विषय को अमृत तुल्य जानता है, वैसे ही उसने कांच को चिंतामणि जानकर जो कुछ अपने पास धन था वह भी लुटा दिया। कुटुंब का त्याग कर कहने लगा कि मुझे चिंतामणि प्राप्त हुई, अब कुटुंब से क्या प्रयोजन। निदान घर से निकलकर वन में गया और वहां उसने बड़े दुख पाए, क्योंकि कांच की मणि से कुछ प्रयोजन नहीं सिद्ध हुआ। ऐसे ही हे राजन, मूर्ख लोग विद्यमान वस्तु को त्यागते हैं, उसका महात्म्य नहीं जानते और उसको नहीं पाते।
श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 269। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, निद्रा का कितना प्रमाण है और कितने काल तक वह रहती है। सूक्ष्म अणु से सृष्टि कैसे उपजी है और कैसे स्थित है, अणु से उसकी क्यों संज्ञा है और अंतर क्यों करे, देवता असुरादिक रूप जिसे प्राप्त हुआ है वह चित्त क्या है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अज्ञान निद्रा अपने काल में तो अनादि है और नहीं जानी जाती कि कब हुई है, और अंत भी नहीं जाना जाता कि कब तक रहेगी। अज्ञान काल में तो इसका आदि अंत प्रमाण कुछ नहीं भासित होता, पर बोध में इसका अत्यंत अभाव दिखता है। चित्त सत्ता की जो अनंतता पूछो तो वह तो अद्वैत चिन्मात्र आत्म समुद्र है। उसमें सूक्ष्म भाव अहम अस्मि की जो समित पूर्ति है उसका नाम चित्त है। उस चित्त ही में आगे चलकर जगत होता है। शुद्ध चिन्मात्र में संवेदन चित्त फुरता है, उसमें यह जगत है। वही चित्त सत्ता देवता असुर और जंगम रूप होकर भासित होती है। वही नाग पिशाच कीट आदि स्थावर जंगम रूप दिखता है। वास्तव में चैतन्य सत्ता ही है, उससे भिन्न कुछ नहीं। सब चिदाकाश रूप है, फुरने से नाना प्रकार का दिखता है। हे रामचंद्र जी, परम शुद्ध चिदणु में, उस चिदणु से मिलकर चित्त अनेक ब्रह्मांड धारण करता है और उस सूक्ष्माणु में अनंत ब्रह्मांड फुरते हैं, परंतु वे उससे भिन्न नहीं। जैसे एक पुरुष शयन करता है तो उसको स्वप्न में अनेक जीव दिखते हैं और उन जीवों में अपने अपने स्वप्न की सृष्टि होती है। तब अनेक सृष्टियां हो जाती है। वैसे ही सूक्ष्म अणु चिदणु में अनंत सृष्टियां फुरती हैं, परंतु आत्मसत्ता से भिन्न कुछ नहीं। जैसे सूर्य की किरणों में अनंत सूक्ष्म तत्र श्रेणु होते हैं, वैसे ही परमात्मा सूर्य के चिदणु सूक्ष्म है। इस त्रश्रेणु से भी सूक्ष्म चिदणु में जीवों की अपनी अपनी अनंत सृष्टियां फुरती है। हे रामचंद्र जी, जब तक चित्त फुरता है तब तक सृष्टियों का अंत नहीं आता। असंख्य जगत ब्रह्म आगे देखे हैं और असंख्य ही आगे देखेंगे। जब चित्त फुरने से रहित होता है तब जगत की कल्पना मिट जाती है। जैसे स्वप्न में सृष्टि दिखती है और बड़े व्यवहार होते हैं, पर जब प्राणी जाग उठता है तब स्वप्न की सृष्टि व्यवहार की कल्पना मिट जाती है और अपना अद्वैत आप ही भासित होता है। वैसे ही चित्त के ठहरने से सब भ्रम मिट जाता है। हे रामचंद्र जी, सूक्ष्म चित अणु की भी संज्ञा तब हुई है जब इसको चित्त का संबंध हुआ है। जब चित्त को अपने स्वभाव में स्थित करोगे तब द्वैत कल्पना और सूक्ष्म स्थूल भाव मिट जाएंगे। इसकी सूक्ष्म संज्ञा अविद्यक भाव से है जो इंद्रियों का विषय नहीं, इससे अणुता है। यह जीव सूक्ष्म अणु में भी व्यापा हुआ है, इसे सूक्ष्म अणु कहता है और अनंतता इस कारण है कि सबको धारण कर रहा है। हे रामचंद्र जी, यह जगत अभाव मात्र है। जैसे मरुस्थल में जलाभास होता है वैसे ही आत्मा में जगत दिखता है। जब यह जगत ही नहीं तो इसका कारण किसे कहिए। आदि सृष्टि बिना कारण के उपजी है और फिर उसमें कारण कार्य भासित होने लगे है, सो आभास की दृढ़ता से ऐसा हुआ है। जैसे बिना कारण के स्वप्न में आदि सृष्टि बीज वृक्ष कुम्हार मिट्टी और घट इकट्ठे प्रकट हो आते हैं, जब उस स्वप्न की दृढ़ता हो जाती है तब कारण और कार्य भासित होते हैं, परंतु जो सोया पड़ा है उसको दृढ़ रूप से भासित होते हैं। वैसे ही अज्ञानी को जगत का कार्य कारण दृढ़ भासित होता है और ज्ञानवान को सब अपना रूप ही दिखता है। जैसे स्वप्न से जागने पर स्वप्न की सृष्टि अपना रूप ही दिखती है कि मैं ही था और कुछ न था, वैसे ही ज्ञानवान को सब जगत आकाश रूप दिखता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, पर्वत, वृक्ष, नदी आदि सब स्थावर जंगम जगत आकाश रूप है और संवेदन के फुरने से देख पड़ता है। वास्तव में भिन्न कुछ नहीं। हे रामचंद्र जी, यह जगत चित्त में स्थित है। जैसे किसी पुरुष ने खंभे में पुतलियों की कल्पना की तो उन पुतलियों के दो रूप होते हैं। एक शिल्पी के चित्त में फुरती है सो आकाश रूप है और एक खंभे में कल्पित है वह स्तंभ रूप है, पर शिल्पी के चित्त में नृत्य करती है। हे रामचंद्र जी, और तो कुछ नहीं बना, सब स्तंभ रूप है और शिल्पी के चित्त में कल्पना मात्र है। वैसे ही चित्त रूपी शिल्पी की जगत रूपी पुतलिया कल्पना मात्र है, पर आत्म रूपी खंभा ज्यो का त्यो है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। जैसे पट के ऊपर मूर्ति लिखी हो तो उस मूर्ति का रूप पट ही है, पट से भिन्न कुछ नहीं, वह पट ही मूर्ति रूप दिखता है। वैसे ही यह जगत आत्मा से भिन्न नहीं, आत्मा ही जगत रूप होकर भासित होता है। आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। जैसे ब्रह्मा आकाश रूप है वैसे यह जगत आकाश रूप है। जगत आधार है और उसमें ब्रह्म बसने वाला है, वैसे ही ब्रह्म आधार है और उसमें जगत बसने वाला है। हे रामचंद्र जी, जगत में जितने विद्या और अविद्या रूप समूह है वे सब संकल्प से रचित है, वास्तव में सब आत्मरूप है। समता, सत्ता और निर्विकारिता आदि और इनसे विपरीत अविद्या रूप सब एक ही रूप है, सब एक ही में फुरते हैं और एक ही रूप है। जैसे अनुभव रूप स्वप्न जगत अनुभव में स्थित होता है सो सब आत्मरूप होता है, वैसे यह सब जगत ब्रह्म रूप है। ब्रह्म से भिन्न कुछ वर की कल्पना है और न शाप की कल्पना है। ब्रह्म सत्ता निर्विकार अपने आप में स्थित है, उसमें न कारण है न कार्य है। जैसे तालाब, नदी और मेघ जल ही होते हैं वैसे ही सब ब्रह्म रूप है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, वर और शाप के कर्ता तो परिचिन्न है और कारण बिना तो कार्य नहीं बनता, तब तुम कैसे कहते हो कि कारण कार्य कोई नहीं? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, शुद्ध आत्मसत्ता चिदाकाश का किंचन जगत होता है। जैसे समुद्र में तरंग उठते हैं वैसे ही आत्मसत्ता में जगत प्रकट होते हैं, और जैसे तरंग जल रूप होते हैं वैसे ही जगत आत्म रूप है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। जैसे आदि में परमात्मा से सृष्टि का स्फुरण हुआ है वैसे ही स्थित है, अन्यथा नहीं होता। सब जगत संकल्प है, अनेक प्रकार की वासना संवेदन में फुरती है, पर जिसको स्वरूप का विस्मरण हुआ है उसको जगत सत्य रूप दिखता है। जो उनको विचार उत्पन्न हो तो वही काम है, जिस काल में विचार उत्पन्न होता है और उसी काल में अज्ञान निद्रा का अभाव होता है। हे रामचंद्र जी, जब विचार अभ्यास करके मन तद्रूप होता है तब यथाभूत दर्शन होता है और संपूर्ण ब्रह्मांड अपना ही रूप भासित होता है, क्योंकि वह अपने आप में स्थित है। सबके अधिष्ठान आत्मसत्ता में अहम प्रतीति होती है, इस कारण अपने आप में सृष्टि भासित होती है। जैसे स्पंदन फुरते हैं वैसे ही उनकी सिद्धि होती है। पहले निवारण दृष्टि होती है, निवारण दृष्टि से सब संकल्प सिद्ध होते हैं, क्योंकि यह सब जगत आत्मा में संकल्प का रचा हुआ है और उसमें इसको अहम प्रत्यय हुआ है। हे रामचंद्र जी, जो यह संकल्प उठता है कि यह कार्य ऐसे हो तो वह वैसे ही होता है। हे राघव, शुद्ध संवेदन में जैसा संकल्प होता है वही होकर भासित होता है। यह जगत संकल्प रूप ही है, संकल्प से भिन्न नहीं, इसलिए वर और शाप का और कोई कारण नहीं। वर और शाप भी संकल्प रूप है। उस संकल्प से जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं वे किसी समवाय कारण से तो नहीं उत्पन्न हुए, संकल्प ही से हुए हैं, इससे सब अकारण है। ब्रह्म रूपी समुद्र में तरंग उठते हैं तो कारण और कार्य मैं तुमसे क्या कहूं। सब जगत ब्रह्म रूप है, द्वैत और एक की कल्पना कुछ नहीं। हे रामचंद्र जी, मुझको सदा ब्रह्म सत्ता ही दिखती है, कार्य कारण कोई नहीं दिखता। जैसे स्वप्न में किसी के घर पुत्र हुआ और वह बड़े उत्साह को प्राप्त हुआ, पर जागृत का संस्कार चित्त में आया तब उसका पिता ही उपजा नहीं तो पुत्र कैसे कहिए। तब तो सब अपने ही आप ही हो जाता है, न कोई कारण दिखता है और न कार्य ही दिखता है। जो स्वप्न में सोया है उसको जैसे दिखता है वैसे ही यह भी है। जैसे वर और शाप का आसरा संकल्प है और संकल्प ही वर और शाप होकर भासित होता है और अकारण ही होता है। जिसको शुद्ध संवित से एकता हुई है वह निवारण है और उसमें जैसे फुरने का आभास फुरता है वैसे ही सिद्ध होता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, एक ऐसे है जिनको आवरण है और उनका संकल्प जैसा फुरता है, वर दे अथवा शाप दे, वैसा ही हो जाता है। स्वरूप का साक्षात्कार उनको नहीं हुआ पर शुभ कर्म उनमें प्रत्यक्ष मिलते हैं, तो शुभ कर्म ही वर और शाप के कारण हुए। तुम कैसे कहते हो कि निरावरण पुरुष का संकल्प सिद्ध होता है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, शुद्ध चिन्मात्र सत्ता ही चिद धातु कहलाती है। उस चिद धातु में जो आभास फुरता है वही संवेदन कहता है। वह संवेदन जब फुरता है तब जीव जानता है कि मैं ब्रह्मा हूं। तो संवेदन ही अपने को जगत का पितामह जाना और उसी ने आगे मनोराज्य की कल्पना की। तब पंचभूतों का ज्ञान हुआ कि शून्य रूप आकाश है, स्पंदन रूप वायु है, उष्ण रूप अग्नि है, द्रवता रूप जल है और कठोर रूप पृथ्वी है। फिर उसी से देश और काल की कल्पना हुई। स्थावर जंगम पदार्थ की कल्पना से वेद शास्त्र धर्म अधर्म का स्फुरण हुआ, जिससे यह निश्चय हुआ कि यह तपस्वी है और इसने तप किया है, इसके कहने से वर हो, पर स्वरूप के साक्षात्कार से रहित होने पर भी उसका कहा होना उसके तप का फल है। आदि में संकल्प ऐसे हुआ है तो वर और शाप का कर्ता तपस्वी नहीं, उसका अधिष्ठान वही संवेदन है जिससे आदि संकल्प उपजा है। हे रामचंद्र जी, वर और शाप संकल्प रूप है, संकल्प संवेदन से फुरा है और संवेदन आत्मा का आभास है, तो मैं कारण और कार्य क्या कहूं और जगत क्या कहूं। आत्मा का आभास संवेदन ब्रह्मा है जिसने आगे संकल्प पुर की सृष्टि रची है। हम तुम आदि सब उसके संकल्प में है। वह ब्रह्मा निराकार निराधार और निरावलंब स्थित है, किसी आकार को नहीं प्राप्त हुआ, इससे उसका विश्व भी वही रूप जानो। हे रामचंद्र जी, जैसे उसका स्पंदन हुआ है वैसे ही वह स्थित है, अन्यथा नहीं होता। जो वही विपर्यय करे तो अन्यथा नहीं हो सकता। अग्नि में उष्णता, वायु में स्पंदन इत्यादि जो गुणधर्म है वे अपने अपने स्वभाव में स्थित है और मुझको सब्रह्म रूप है। जैसे शरीर में हाड़ मांस से भिन्न कुछ नहीं होता, वैसे ही मुझको ब्रह्म से भिन्न नहीं भासित होता। जैसे घट में मृतिका से भिन्न कुछ नहीं होता और काष्ठ की पुतली की काष्ठ से भिन्न चेष्टा नहीं होती, वैसे ही जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं होता। हे रामचंद्र जी, यह सब जगत जो तुमको भासता है ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही फुरने से नाना प्रकार जगत के रूप में भासित होता है। जैसे समुद्र अपनी द्रवता से तरंग, बुदबुदे, फेन आदि होकर भासित होता है, वैसे ही ब्रह्म संवेदन से जगत रूप होकर दिखता है, पर ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। जैसे पर्वत से जल गिरता है सो कण होकर दिखता है, और जब गिरकर ठहरता है तब समुद्र होता है, परंतु जल से भिन्न कुछ नहीं होता। तैसे ही जब चित्त फुरता है तब नाना प्रकार का जगत भासित होता है, और जब ठहर जाता है तब सब जगत एक अद्वैत रूप दिखता है, पर ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं होता। ब्रह्म ही स्थावर जंगम रूप दिखता है। जहां पुर्यष्टका का संबंध नहीं दिखता वह अजंगम या स्थावर कहता है, और जहां पुर्यष्टका का संबंध होता है वह जंगम रूप दिखता है, परंतु आत्मा में दोनों तुल्य है। जैसे एक ही हाथ की उंगली है जिसको उष्णता अथवा शीतलता का संयोग होता है वह फुरने लगती है, और जिसको शीत उष्ण का संयोग नहीं होता वह नहीं फुरती। वैसे जिस आकार को पुर्यष्ट का संयोग होता है वह फुरता है और चेतनता दिखती है, और जिसको पुर्यष्टका का संयोग नहीं होता उसमें जड़ता भासित होती है। जड़ भी दो प्रकार के है, एक को पुर्यष्टका का संयोग है और जड़ है, और दूसरे को पुर्यष्टका का संयोग नहीं है और जड़ है। वृक्ष और पर्वतों को पुर्यष्टका का संयोग है, परंतु घन सुचुप्ति जड़ता में स्थित है, इस कारण जड़ भासित होते हैं, और मृतिका पुर्यष्टका से रहित है, इस कारण जड़ है। परंतु वास्तव में स्थावर जंगम, इष्ट अनिष्ट, वर शाप, देश काल, पदार्थ सभी ब्रह्मरूप, और ब्रह्म सत्ता ही ऐसे स्थित हुई। जैसे अपने अनुभव में संकल्प नगर नाना प्रकार का दिखता है परंतु संकल्प रूप है, संकल्प से भिन्न कुछ नहीं। जैसे मृतिका की सेना अनेक प्रकार की होती है परंतु मृतिका रूप है, मृतिका से भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही सब अर्थ धारण करने वाला चैतन्य धातु नाना प्रकार के आकार को प्राप्त होता है परंतु चेतनता से भिन्न कुछ नहीं होता। हे रामचंद्र जी, धातु उसको कहते हैं जो अर्थ को धारण करे। जितने पदार्थ तुमको दिखते हैं वे सब अर्थ रूप है, और वस्तु रूप जो धातु है वह आत्मसत्ता है। उसने दो अर्थ धारण किए हैं, एक स्वप्न और दूसरा बोध अर्थ स्वप्न। एक स्वप्न अर्थ और दूसरा बोध अर्थ। स्वप्न अर्थ में तो नाना तो भासित होता है, और बोध अर्थ में एक अद्वैत सत्ता भासित होती है। जैसे एक ही धातु मिलने और बिछुड़ने से दो अर्थ रखती है सो वे परस्पर प्रतियोगी शब्द है, परंतु एक ही ने धारण किए, वैसे ही स्वप्न और बोध अर्थ इन दोनों को आत्मसत्ता ने धारण किया है। जैसे तरंग और बुलबुले जल रूप है वैसे ही जगत ब्रह्म रूप है। जो ज्ञानवान है उनको सब ब्रह्म रूप दिखता है, और जो अज्ञानी को नानात्व भाषित होता है। इससे तुम स्वभाव में निश्चय रखकर देखो कि सब ब्रह्मरूप है, भिन्न कुछ नहीं। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो सब ब्रह्म ही है तो नीति क्या है और नाना प्रकार के पदार्थ क्यों भाषित होते हैं? तुम कहते हो कि जगत संकल्प से रचित है, तो हे भगवान, ये जो असंख्य रूप पदार्थ है उनकी संज्ञा की नहीं जाती, तब इन पदार्थों में से एक एक का अभाव अचल रूप होकर कैसे स्थित है? सब देवताओं में सूर्य का प्रकाश क्यों अधिक है और एक ही सूर्य में दिन और रात्रि छोटे बड़े क्यों होते? यह विचित्रता क्यों है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, शुद्ध चिन्मात्र सत्ता में अकस्मात जो आभास पूरा है, उस आभास का नाम नीति है। यह सृष्टि भी आभास मात्र है, किसी कारण से नहीं उपजी। जिसके आश्रय से आभास पूरता है, वही वस्तु अधिष्ठान होती है। इससे सब जगत ब्रह्म रूप है और चिन्मात्र सत्ता अपने आप में स्थित है। वह न उदय होती है और न अस्त होती है। वह परिणाम से रहित सदा अद्वैत रूप स्थित है। उसमें न जागृत है, न स्वप्न है और न सुषुप्ति है। तीनों अवस्था आभास मात्र है, पर चैतन्य सत्ता में इससे अद्वैत नहीं बना। ये तीनों इसी स्वभाव और प्रकाश रूप है, इससे भिन्न कुछ नहीं। जैसे आकाश में शून्यता, वायु और निस्पंद, अग्नि और उष्णता और कपूर और सुगंध में भेद नहीं, वैसे ही जागृत आदि जगत और ब्रह्म में भेद नहीं है। हे रामचंद्र जी, शुद्ध चिन्मात्र में जो चित्ताभास हुआ है, उसमें चैतन्य आभास पूरा है और उसमें जैसा संकल्प पूरा है, वैसे ही स्थित हुआ है कि यह इस प्रकार हो और इतने काल रहे, इसी संकल्प निश्चय का नाम नीति कहा गया है। जैसे आदि संकल्प दृढ़ हुआ है, वैसे ही अब तक पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश अपने अपने भाव में स्थित है और अपने स्वभाव को नहीं त्यागता। जब तक उनकी नीति है, तब तक वे वैसे ही जगत सत्ता में स्थित है। हे रामचंद्र जी, इसका नाम नीति है। जैसे आदि संकल्प रखा है, वैसे ही स्थित है। वह वास्तव में आभास रूप है। अकस्मात यह आभास पूरा है तो किसी सूक्ष्म अणु में प्रकट हुआ है। जैसे समुद्र के किसी स्थान में तरंग, बुलबुले आदि उठते हैं, संपूर्ण समुद्र में नहीं उठते, वैसे ही जहां संवेदन रूप जैसा फुरना स्फुरन होता है, वैसे ही स्थित होता है। वही नीति भी है। जैसे तरंग और बुलबुले समुद्र से भिन्न नहीं, वैसे ही नीति आत्मा से भिन्न नहीं। जैसे द्रवता से समुद्र में तरंग उठते हैं, वैसे ही आत्मा में संवेदन से नीति और जगत जो फुरते हैं, वही रूप है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। जैसे किसी ने कहा कि चंद्रमा का प्रकाश है तो चंद्रमा और प्रकाश में भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में भेद नहीं। यह विश्व आत्मा का स्वभाव है। जैसे एक ही काल दिन, पक्ष, वार, मास, वर्ष, युग, कल्प इत्यादि बहुत संज्ञाएं है, परंतु काल एक ही है, वैसे ही जगत के भिन्न भिन्न नाम है, सो सब ब्रह्म ही है। हे रामचंद्र जी, जब संवेदन चित्तरूप होता है, तब प्रथम शब्द तन्मात्रा जगती है और उससे आकाश उपजता है, जिसका स्वभाव शून्यता है। फिर जब उसने स्पर्श तन्मात्रा को चेता, तब उसमें इससे वायु उपजी। वायु का स्पंदन स्वभाव है। फिर रूप तन्मात्रा को चेता, तब उसमें अग्नि प्रकट हुई, जिसका स्वभाव उष्ण है। फिर रस तन्मात्रा को चेता, तब उससे जल प्रकट हुआ, जिसका स्वभाव द्रव है। फिर गंध तन्मात्रा को चेता, तब उससे पृथ्वी प्रकट हुई, जिसका स्वभाव स्थिर है। इस प्रकार पंचभूत उपजे है। हे रामचंद्र जी, आदि में जो शब्द तन्मात्रा उपजी है वह जितने शब्द समूह है उनका बीज है, सब उसी से उत्पन्न हुए हैं। वह जितने शब्द समूह है उनका बीज सब उसी से उत्पन्न हुए हैं। पदार्थ, वाक्य, वेद, शास्त्र, पुराण सब उसी से उपजे है। इसी प्रकार पृथ्वी, अब तेज, वायु, आकाश का जो कार्य है वही उन सब का बीज तन्मात्रा है। उस तन्मात्रा का बीज वह संवित सत्ता ही है। हे रामचंद्र जी, अब इन तत्वों की कहानी सुनो। पृथ्वी अणु भी होती है और एक दल भी होती है। पृथ्वी तो एक है और अणु भी वही है, वैसे ही सब तत्वों को देखना। पृथ्वी की खानी तो पीठ है जो संपूर्ण प्राणियों को धारण करती है। जल की खानी समुद्र है जो सब पदार्थों में रस रूप होकर स्थित है। अग्नि का तेज जो प्रकाश है उसकी समष्टि सूर्य है। सब स्पंदनों की समष्टि पवन है और संपूर्ण शून्य पदार्थों की खानी आकाश है। इस प्रकार ये पांचों तत्व संकल्प से उपजे है। जैसे बीज से अंकुर उपजता है वैसे ही ये तत्व संकल्प से उपजे है। संकल्प संवेदन से उपजा है और संवेदन आत्मा का आभास है। वह अद्वैत, अच्युत, निर्विकल्प और सर्वदा अपने आप में स्थित है। उसी के आश्रय से संवेदन आभास उपजा है। फिर संवेदन से संकल्प उपजा है और संकल्प से जगत बन गया है। जैसे समुद्र में तरंग उठते हैं और लीन होते हैं वैसे ही संकल्प से जगत उपजता है और फिर संकल्प में ही लीन हो जाता है। जैसे तरंग जल रूप है वैसे ही पृथ्वी जल, तेज, वायु, आकाश सब चैतन्य रूप है। सब पदार्थ जो दिखे सुने जाते हैं और नहीं देखे सुने जाते वे सब चैतन्य रूप है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, वही आत्मा इस प्रकार होता है। स्वप्न में अपना अनुभव ही पदार्थ होकर दिखता है परंतु कुछ बना नहीं। नाना प्रकार का दिखता है तो भी नाना नहीं, वैसे ही जगत नाना प्रकार का दिखता है तो भी कुछ बना नहीं।
हरि ओ हरि ओ हरि ओ ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।